अगले कुछ दिन हम लोग सावित्री को केंद्र में रखकर और सावित्री को सरकमफ्रेंस में भी रखकर कुछ दिन हम लोग इस पर स्वाध्याय, सत्संग, डुबकी लगाना, डूब जाना, जो भी शब्द यूज करें, वी विल डू दैट। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने जब महाभारत और कई अन्य ग्रंथों की रचना कर ली थी, फिर भी उनके हृदय में कोई चीज़ थी जो पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। और ऐसे समय में नारद मुनि आकर उनसे कहते हैं कि आपने बहुत कुछ अभिव्यक्त किया है संसार में, बहुत सारे सत्य दिए हैं, लेकिन अभी एक चीज़ आपको और देनी बची है, जिसके बिना आपका जो यहाँ पर कर्म है, दिव्य कर्म है जो करने के लिए आए हैं, वो पूर्ण नहीं होगा। और वो कर्म था श्रीमद् भागवत। इस वन ऑफ द स्टोरीज की श्रीमद् भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कोई चीज़ थी जो पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं हुई थी। और श्रीमद् भागवत ही, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि श्रीमद् भागवत वास्तव में एक ऐसी पुस्तक है जिसमें वह पक्ष है जो वेदों और उपनिषदों में नहीं पाया जाता है। इट इज़ अबाउट द डिवाइन डिसेंट इनटू ह्यूमैनिटी। भगवान क्या है, सत्य क्या है, सत्य की खोज कैसे होती है, योग पथ क्या है, ये सब एक कहानी है। एक दूसरी कहानी है कि भगवान की धरती पर लीला क्या है, वो कैसे धरती पर आते हैं और धरती पर आकर मनुष्यों से, जीवों, अन्य जीवों के साथ, पशुओं से, वृक्षों से कैसा संबंध जोड़ते हैं। और उस लीला को सुनना ही मात्र अपने आप में मोक्षदायिनी होता है, क्योंकि जब हम उस लीला को सुनते हैं किसी भी रूप में, तो वास्तव में हम पूरी तरह एक उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं का दृश्य देख रहे हैं, उन्हीं की दृष्टि से संसार को देख रहे हैं, उन्हीं की दृष्टि से स्वयं को देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हम श्री अरविंद के लेखों में पाते हैं कि उनकी लेखनी अगर हम देखें तो 3-4 फेजेज में रही। एक तो वह जो उन्होंने पांडिचेरी आने के पहले लिखे हैं, और उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, वंदे मातरम, कर्मयोगिन, बंगला राइटिंग्स, धर्म इत्यादि इत्यादि। कुछ जो उन्होंने निर्वाण अनुभव के पहले लिखी हैं, कुछ जो बाद में लिखी हैं। उसके बाद एक अंतराल आता है, फिर आर्य। ये साल सेंटेनरी ईयर है आर्य का, और जस्ट कोइंसिडेंटली एक्चुअली ये मेरे हाथ में जो पुस्तक है वो आर्य का फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट ईयर के जो वॉल्यूम्स हैं वो सारे इसमें हैं। सो आर्य में जो उनके मेजर वर्क्स, आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योग, उपनिषद, वेद, एसेज ऑन द गीता, ये सब उसमें क्रमबद्ध हुए थे। तो ये एक फेज, दूसरा फेज है। फिर एक तीसरा फेज है जब जगन माता आती हैं और यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर देती हैं, या यूं कहें कि श्री अरविंद उनको आश्रम में, भारतवर्ष में और धरती के मध्य में स्थापित करके वो स्वयं पाश्चर्य में चले जाते हैं। फिर जगन माता की लीला प्रारंभ होती है, पहले आश्रम के एक छोटे से प्लॉट में, फिर वो लीला सोसाइटी, अनेकों केंद्र, ऑरोविल, और अब वो लीला हर किसी के हृदय में, जो भी थोड़ा खुला है, जहाँ भी, वो कार्य हो रहा है। उस समय भी श्री अरविंद की कुछ लेखनियाँ हैं, विशेषकर लेटर्स ऑन योगा। पहले लोगों ने माता जी के बारे में, फिर योग के संबंध में, उनकी पुस्तकों के संबंध में जो कुछ पत्र पूछा, श्री अरविंद पत्र द्वारा उसका उत्तर देते हैं। ये थर्ड, तीसरे प्रकार की लेखनी है। किंतु इस सब के बावजूद कोई चीज़ थी जो श्री अरविंद के अंदर अभिव्यक्त होना चाह रही थी, मानो अभी भी वह पूर्णता उन्होंने प्रकट नहीं की है जो उनके अंदर है। सारी लेखनी अब तो 35 वॉल्यूम में आ रही है, और अगर उसमें से हम सावित्री को हटा दें तो स्टिल इट वुड बी 33-34 वॉल्यूम्स। और बहुत कुछ जो प्रिंट पब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने कन्फिस्केट कर लिया। तो श्री अरविंद से एक बार निरोद्धा ने पूछा, आपने तो सारा ज्ञान उड़ेल दिया है। श्री अरविंद कहते हैं कि नहीं, अभी जो कुछ मैंने दिया है वो तो 10% भी नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आप पूरा क्यों नहीं देते, तो उनका उत्तर बिल्कुल सही था कि पहले मनुष्य इसके लिए तैयार हो जाए। श्री अरविंदो वॉज वेरी जेनरस, कहना तो उनको ये चाहिए था पहले इसको भी पढ़ने का प्रयास करें, एक पेज दो पेज जीने का प्रयास करें। तो वह जो चीज़ इन सब के बावजूद उनके अंदर जो अभिव्यक्त होने के लिए उस पूर्णता को जो अभिव्यक्त करना चाह रहे थे, ठीक वैसे जैसे श्रीमद् भागवत, ठीक वैसे जैसे हम देखेंगे कि धरती पर भगवान की लीला रामायण में प्रकट हुई है, उसी प्रकार से उसी लाइन में मैं सावित्री को देखता हूँ। और कारण ये कि सावित्री ना तो हम योग कैसे करें, जीवन का सत्य क्या है, ये सब सावित्री के अंदर है, सब कुछ है, कुछ नहीं बचा है। परंतु मूलतः सावित्री धरती पर भगवान के अवतरण की कथा है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द डिसेंट ऑफ द डिवाइन मदर अपॉन अर्थ। और भगवान के अवतरण की कहानियाँ हमारे यहाँ लिखी गई हैं, परंतु प्रत्येक कथा पुरुष पक्ष को सामने रखकर, राम की कथा, कृष्ण की कथा, बुद्ध की कथा इत्यादि इत्यादि, वामन अवतार, पहली बार जगन माता का अवतरण पार्थिव शरीर में, और उस अवतरण के साथ जो कुछ घटनाक्रम जुड़े हैं, कौन से घटनाक्रम हैं? जब जगन माता अवतरित होती हैं तो कौन सी चीज़ छूट जाती है? जिन्होंने सृष्टि, जिनके अंदर से निकली है, सारी सृष्टि जुड़ी हुई है, तो सारी सृष्टि के साथ किस तरह से वो संबंध जोड़ती हैं और किस तरह से मनुष्यता को और धरती को एक मार्ग दिखलाती हैं, एक नया मार्ग, जिसकी बात श्री अरविंद की राइटिंग्स में हम शुरू से देखेंगे। और ना केवल मार्ग दिखाती हैं, उसको और सरल और सरल और सहज कैसे होता जाए। पूरा माँ श्री अरविंद का जो एफर्ट था वो ये था कि यह यात्रा मनुष्य से अति मानव की ओर जितनी अधिक सरल हो सके। और ये थोड़ा सा हम लोगों का दुर्भाग्य है, हम सभी लोग जो जाते हैं, बोलते हैं यहाँ वहाँ, माँ श्री अरविंद चाहते हैं कि ये जितना सरल हो सके उतना, और हम लोग जितना कॉम्प्लेक्स हो सके। सुपर माइंड के ऊपर ऐसी ऐसी किताबें जिसको पढ़ के लगता है सुपर माइंड शायद इजी है समझना, लेकिन पुस्तकें उसे बड़ा जटिल कर देती हैं। माँ श्री अरविंद ने तो कितना सरल योग को बना दिया है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सिंथेसिस में इसका वर्णन है कि अगर लक्ष्य में देखें तो ऐसा लक्ष्य जो आज तक धरती के सामने कभी रखा नहीं गया, द मोस्ट डिफिकल्ट, और अगर इसके मेथड में देखें तो द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे? सावित्री के अंत में ले ऑल ऑन हर, शी इज द कॉज ऑफ ऑल। इतना सिंपल। इसमें जो हम लोगों का रोल है वास्तव में केवल सत्यवान का रोल है। हम लोग खुद नहीं जानते कि हम, हमारी पेरेंटेज क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं जानता। सत्यवान की तरह हम लोग भी उसी अज्ञान के घेरे में रहते हैं। लेकिन एक मुहूर्त आता है हर किसी को, एक मैंने बड़ी सुंदर बात पढ़ी थी, इंग्लिश की फ्रेज है, Everybody should get a second chance. So everybody should get at least one chance in life to turn to the divine. अगर ये हो तो यही बस एक सौभाग्य है, बाकी सब दुर्भाग्य हैं। एक चांस। अब वो एक चांस में व्यक्ति क्या करता है उस पर उसके आने वाले जन्म निर्धारित हो जाते हैं हर किसी के पास। हमारे यहाँ जगन्नाथ का रथ आता है, एक कहानी प्रचलित है, सब घरों में आकर नॉक करते हैं भगवान, देवदूत भी नहीं उनके, भगवान स्वयं आते हैं, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए एजेंडा ऑफ द फ्यूचर। तो उस समय अगर हम कैलकुलेट करने लगे, अच्छा लेकिन पहले आप बताइए क्या आप हमसे लेंगे, क्या अपेक्षा करते हैं इत्यादि इत्यादि, तो चले जाते हैं। इसका बड़ा सुंदर वर्णन है, श्री अरविंद की एक कविता है, द ड्रीम बोट। ड्रीम बोट में भगवान आते हैं, स्वर्णिम देह है, ल्यूमिनस ब्राउ है, और आकर पूछते हैं, डू यू कम नाउ, इज द हार्ट्स फायर रेडी, अभी चलोगे, क्या तुम्हारे हृदय की अग्नि तैयार है? और श्री अरविंद लिखते हैं कि अपने बारे में नहीं लेकिन मनुष्य की अवस्था है कि मैं खड़ा होकर सोचने लगा, तोल रहा था, माप रहा था, क्या छूटेगा, क्या पाऊंगा, एंड द ड्रीम बोट एंड द गोल्ड गॉड वेनिश्ड। अब वो चले तो गए पर जाते जाते उन्होंने कुछ कर दिया मैजिक। तो भगवान देते हैं ये तो सब लोग जानते हैं, पर भगवान का एक दूसरा रूप है, हारते हैं, ले जाते हैं। तो गए तो जाते जाते उन्होंने देखा कि इसके हृदय में एक फांस गड़ी हुई है। मैं तो आया था, इस संसार से जुड़ा हुआ था, बहुत बुरी तरह चिपका था, तो उसको लेके चले जाते हैं। तो अब क्या अवस्था होती कि ना भगवान है ना संसार है, वही संसार जो सुख देता था अंदर सब नीरस हो जाता है कि भाई तुम आओगे तभी अब आनंद आएगा। तो ये जो अवस्था सत्यवान के सामने आती है, सावित्री कम्स। देखिए सावित्री की ब्यूटी ये कि आप कहीं से बढ़ सकते हैं। आई विल प्रोबली स्टार्ट फ्रॉम देयर, देन वील कम बैक टू द ओरिजिनल थीम। हाँ, मैं पेज बताता जाऊंगा। सत्यवान पेज 401, सत्यवान एंड सावित्री। अब ये कौन है सत्यवान? हम हैं, हम सब हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं, सत्य को धारण किए हुए हैं सत्यवान, किंतु हम अपने राज्यम समृद्धम को खो चुके हैं। हमारे पिता मन, मन पिता है कहा जाता है हमारे वेदों में बड़ा सुंदर, अग्नि इज द मोस्ट एंशियंट एंड द मोस्ट यंगेस्ट। एक जगह वेदों में वर्णन है कि वो अग्नि को बच्चे के रूप में, ओ चाइल्ड। क्यों चाइल्ड? अंत में मनुष्य का पहले देह का विकास होता है, फिर बच्चे का डेवलपमेंट देखिए, पहले वो केवल एक देह है, फिर उसमें प्राण तत्व आता है, उछलना कूदना बंदर की तरह सब जगह इधर उधर, फिर मन तत्व आता है, प्रश्न करेगा सब कुछ, अंत में अग्नि तत्व, वो चैत्य भाव। जनरली ये विकास का क्रम है, एक्सेप्शंस की बात नहीं। लास्ट में अग्नि तत्व आता है, वो भगवान का तत्व, दिव्य तत्व आता है, तब उसके अंदर एक अलग वृत्ति जागती है। वो केवल मन को, केवल बाहरी चीज़ों को समझने नहीं, अपनी ओर मुड़ता है, आंतरिक विकास, ईश्वर क्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न उसके अंदर, मन के अंदर आते हैं। तो हम सत्यवान हैं, हमारा मन अंधकार में है। सत्यवान के पिता द्युमत सेन प्रकाशवान है, द्युमत सेन, किंतु अंधे हो गए हैं, राज्य से निष्कासित हो गए हैं। तो हमारी भी यही अवस्था है, मन अंधा है, भगवान सामने खड़े हों तो भी नहीं देख पाता है, डाउट करता है, मेरे जैसे दिखते हैं भगवान कैसे है, कौन कह रहा है भगवान है। ये मन की अवस्था है। राज्यम समृद्धम से निष्कासित हो गए हैं तो हमको लगता है हमको इधर उधर 10 जगहों से कुछ कुछ मांगने की जरूरत है, तब हमारे अंदर समृद्धि आएगी। ये अवस्था है हम सबकी। और हम सबके पास वो एक भागवत मुहूर्त होता है जब हमारे सामने भगवान खड़े होते हैं, अचानक डेस्टिनी ले आती है। तो वह अवसर सत्यवान के जीवन में जो आता है उसका वर्णन है 401, जंगल में। जंगल क्या है? इग्नोरेंस का, इग्नोरेंस के जंगल में, पेज 401। और अचानक सावित्री उसके सामने खड़ी हो जाती हैं, और जब खड़ी हो जाती हैं तो सत्यवान कहते हैं 401 के लास्ट में, एक लंबा एक उत्तर है लेकिन मैं लास्ट लाइन से शुरू कर रहा हूं, 401 पे लास्ट लाइन है। इफ आवर टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस दाउ कैनस्ट फील, लास्ट लाइन 401 पे सावित्री को सत्यवान कह रहे हैं, इफ आवर टाइम वेक्स्ड अफेक्शंस दाउ कुड फील। देखिए इस लाइन की में कितनी करुणा है, कितना मानव का भाव है। भगवान से हम पूछ रहे हैं क्या आप अनुभव कर पा रहे हो जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इफ आवर टाइम वेस्ट अफेक्शन दाउ कुड फील। आप तो देवता हो, आप तो उस क्षेत्र से आ रहे हो जहां ना ग्रीफ है, जहां आदमी दुख शोक शंका सबके पार चला गया है, इसको ईश उपनिषद कहती है, वहां ना सूर्य चमक, ईश उपनिषद कहती है कि वहां ना दुख है ना संताप है किसी प्रकार का। तत्र को मोह क शोक, ना मोह है ना शोक है, वहां से तुम आ रहे हो, उस भूमि से आ रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। सत्यवान देख के कहता है मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या आप अनुभव कर सकती हो जो हम महसूस करते हैं? लुक एट द ब्यूटी ऑफ फ्रैंकनेस, कि आप अनुभव करते हो। अब ये देखिए डिफरेंस है, जो गॉड्स होते हैं जो दूसरी भूमि पर, लोग जाते हैं मंदिरों में, भगवान को देवताओं की पूजा करते हैं। डिफरेंस एक है गॉड्स में और अवतार में। गॉड्स कैन नॉट फील अवर टाइम वेस्ट अफेक्शंस। वो तो सोचते हैं ये मनुष्य क्यों रोते हैं, रोने की क्या बात है। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि धरती पर जन्म लेना क्या होता है। इसकी माँ ने कई जगहों पर इसके बारे में बताया है, क्योंकि उनके अंदर चैत्य नहीं है। वो तो बस एक, जैसे आप ऑफिस में चले जाइए, वहाँ जाके आप कह रहे हैं कि देखिए आप मेरा जल्दी से सर्टिफिकेट पास कर दीजिए, मेरी पेंशन रुकी हुई है। ऑफिस में साहब बैठेगा क्या है उसमें, हम तो वही रूल से जा रहे हैं, सिंपल। आपका दुख आपका दर्द वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब भगवान अवतरित होते हैं तो मनुष्य की पीड़ा समझते हैं, आत्मसात करते हैं। राम जी का विलाप जिसको देखकर सती नहीं समझ पाती कि क्यों असाधारण मनुष्य की तरह छाती पीट के जा रहे हैं, मेरी सीता सीता ये कैसे भगवान है, भगवान तो ऐसा नहीं होता है, और टेस्ट करने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर वो लाइन है, सबसे पहले सत्यवान पूछते हैं, इफ अवर टाइम वेस्ट अफेक्शंस दाउ कुड्स फील, अर्थ ईज ऑफ सिंपल थिंग्स कैन सेटिस्फाई, और तुम मेरे झोपड़ी में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कुछ बहुत भोजन दावत ये नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में कुछ फल फूल हैं, यदि आप इसे ग्रहण करना स्वीकार करो। लुक एट द ब्यूटी, हम भगवान की ओर, हर कोई हर किसी की सीमा होती है भगवान को देने के लिए, तो भगवान आप ये स्वीकार करोगे। If thy glance can dwell content on earthly soil and this celestial summary of delight, उनका वर्णन कर रहे हैं सावित्री का, एक एक जगह इतना अद्भुत वर्णन है। सत्यवान की दृष्टि में सावित्री क्या है, celestial summary of delight, आनंदमयी, मानो सारा आनंद जो स्वर्गिक अलौकिक आनंद है celestial, वो एक देह में सीमित होकर आ गया है। तो कहते हैं दाई गोल्डन बॉडी डैली विथ फटीग, क्या आप तैयार हो, यहां पर अगर आके आप रहोगी तो मैं तो लकड़हारा हूं, रोज जाके मैं मेहनत करूंगा, आपको चूल्हा चक्की में काम करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर दिस, लुक हाउ ही इज। हम जब डिवाइन की ओर, डिवाइन जब हमसे बनते हैं तो डिवाइन को अपने ऊपर क्या लेना पड़ता है हम कल्पना नहीं कर सकते। ये सेंटेनरी है माँ के पहले बार आने की, शायद हम लोगों को पता हो या ना पता हो। अब तो हम लोग आते हैं तो सब एसी ढूंढते हैं, गर्मी की बात होती है, सब होती है। कल्पना कीजिए माताजी फ्रांस से आ रही हैं, उस समय के भारत में आ रही हैं, और कहाँ रुकती हैं, सबसे पहले आती हैं तो कराई काल में एक कमरे में रुकती हैं, और उस कमरे के अंदर वाइट एंड्स डायलेपिडेटेड, माने टूट रहा है, प्लास्टर निकल रहा है, ह्यूमिड, हर तरह की उसके अंदर स्मेल, डार्क एंड डिंजी, इन्फेस्टेड विद रैट्स, उस कमरे में माँ रुकती है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, माँ की प्रार्थना है वहाँ लिखी हुई, मस्ट रीड इट। उस कमरे में वो क्या एक्सपीरियंस करती है, अगर हम चाहे तो हम लोग तो पूरी रात कहाँ आ गए। व्हाट शी एक्सपीरियंसेस एंड राइट्स, हाउ शी सीज द डिवाइन एवरीवेयर इन ऑल थिंग्स, ये भगवान स्वीकार करता है, ये उनकी कृपा करना है। तो माँ आ गई है सत्यवान के पास, सत्यवान को चॉइस करनी है, तो वो कहता है कि देखो मैं तो ऐसा हूं, साधारण हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपका हो जाऊं, लेकिन आप स्वीकार करोगी क्या मेरे बीच में रहना, मेरे घर में रहना, मेरी कुटिया में तो कुछ खास है नहीं, छोटी सी कुटिया है। तो वो कह रहे हैं यहां पर, oppressing with its grace our terrain, while the frail sweet passing taste of earthly food delays thee and the torrent sleeping wine, मेरे पास पैराडाइज का फूड नहीं है। कहा जाता है कि वहां के एक एक फल का अलौकिक स्वाद है, मैं तो धरती के जो भोजन है वो आपको दे सकता हूँ, और वहाँ तो सोमरस पिलाया जाता है। सत्यवान कह रहे कि मैंने सुना है, मैं तो टॉरेंट स्लीपिंग वाइन, पास में एक नदी है उसमें से जल लाकर आपको दे सकता हूँ। डिलेज दी एंड द टॉरेंट स्लीपिंग वाइन, डिसेंड, लेट दाई जर्नी सीज कम डाउन टू अस। वो कह देता है कि अगर ये सब आप स्वीकार कर सकती हैं, हमारे बीच में रहना, हमारी तरह हम तो श्रम करते हैं, पसीना भी आता है, आप तो देख के लग रहा है कि स्वर्ग से अचानक मेरे बीच में आ गई हैं, हम तो यही कुछ दे सकते हैं, अगर आप ये स्वीकार करती हैं तो आप कृपा करके यहाँ आइए और हमारी कुटिया में चलिए। इट इज़ द सोल स्पीकिंग टू द डिवाइन। ये सत्यवान सावित्री का संवाद, हमारी सोल डिवाइन को बोल रही है, कम डिसेंड लेट दाई जर्नी सीज। तो ये पूरी कहानी जो है सत्यवान सावित्री की, इट इज़ द स्टोरी ऑफ द सोल एंड द डिवाइन। नॉर्मल कोर्स में हम लोग ये, हमें ये बताया जाता है कि हमारी आत्मा अभीप्सा करती है और अभीप्सा के प्रत्युत्तर में भगवान की कृपा आती है, इजंट इट, दिस इज व्हाट वी ऑल लर्न। ये मनुष्य की दृष्टि से देखा हुआ सत्य है, डिवाइन की दृष्टि से देखा हुआ सत्य कुछ और है। कृपा पहले आती है, सब कुछ तैयार करती है बाद में, ताकि मनुष्य उसको ग्रहण करने के लिए, आनंद उसका पाने के लिए तैयार हो, इसलिए वो अभीप्सा डालती है। जैसे माँ बच्चे का सब भोजन तैयार करती है घर के अंदर, बच्चा खेल रहा है, माँ ये नहीं कहती अच्छा तू आ जा तब मैं आटा गूंथना और सब्जी काटना शुरू करूंगी, सब तैयार कर दिया, इजंट इट, सब माँ लोग तो सब जानते हैं, राइट, है ना, होता है ना, आप खेल रहे हो, मम्मी ने सब तैयार कर दिया है, लेकिन जब आप आते हो तो आप क्या कहते हो, मम्मी मुझे भूख लगी है, उस अवसर पर माँ आ जा बेटा परोस देती है। तो मम्मी आपकी भूख का इंतजार नहीं कर रही थी, मम्मी माँ अभीप्सा की प्रतीक्षा नहीं करती हैं, वो सब तैयार करके भोजन रखती हैं, लेकिन अभीप्सा जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर भूख नहीं लगी है और मम्मी ने खाना परोस दिया तो आप क्या बोलोगे, मेरी इच्छा नहीं है, एक और खा के भाग जाओगे। माता जी की एक प्रार्थना है, प्रार्थना और ध्यान में, सिंस मैन रिफ्यूज्ड द मील दैट आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर हिम, आई हैव ऑफर्ड इट बैक टू गॉड। तो सावित्री सत्यवान में, सत्यवान के आने के पहले एक लंबी पटकथा है, मनुष्य तो बहुत बाद में आता है, उसके पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी, उसके पहले जड़ तत्व, जड़ तत्व के पहले महाअंधकार, और महाअंधकार के पहले भगवान, और वो सब कुछ तैयार कर रहा है कि इस धरती धीरे 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 ग्रो करेगी, उसके अंदर एक मनुष्य नाम का एक प्राणी आएगा, मनुष्य नाम के प्राणी के अंदर मैं अभीप्सा डालूंगा, वो अभीप्सा करेगा, तब मैं उसको मेरे अनुरूप बनाऊंगा। इट इज़ ए लॉन्ग स्टोरी। हम सोचते हैं अरे हमारे अंदर अभीप्सा जाग गई, एंड वी थिंक वी आर समवन वेरी स्पेशल। इट इज़ ए कृपा, और वो कृपा का प्रारंभ अभी से नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से। माँ कहती हैं द क्रिएशन वॉज एन एक्ट ऑफ लव। इसका सावित्री की जो प्रारंभ है सिंबल डॉन, उसकी जो पहली कुछ लाइन है उसको माँ ने स्वयं उसका मीनिंग बताया है, बड़ी अद्भुत लाइन है। और पहले हम स्टोरी, उसके बाद ये विल रीड दोज लाइन्स। माँ बताती हैं कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ और जो चार महाशक्तियाँ निकलीं भगवान के अंदर से, उस एक के अंदर से, और वो सृष्टि को रचना उन्होंने प्रारंभ कर दिया, धीरे धीरे प्रत्येक शक्ति को लगता था कि मैं ही हूँ। पता नहीं आप लोग देवों का देव महादेव देखते हैं कि नहीं, देख कोई देखता है, हाँ, कल परसों तरसों के एपिसोड में था ना, वो अग्नि तत्व सोचता है मैं ही हूँ, ऐसे बीच बीच में होता है, देवताओं को भी एक दिमाग में एक कीड़ा काटने लगता है मैं ही हूँ। तो जैसे ही वो ये होता है असंतुलन हो जाता है, वो भगवान से कट ऑफ हो जाते हैं, और वही जो देवता है वही असुर में परिवर्तित हो जाता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, असुर में भी शक्ति होती है, देवताओं में भी शक्ति होती है, पर देवता समर्पित होते हैं। जहां समर्पण हटा, जहां पर मैं ही हूं, अलग हूं सबसे, देवता समर्पित ना भी हो तो उनको पता होता है कि हम उस सोर्स से कनेक्टेड हैं, हमारे ऊपर भी कोई है, परंतु जहां मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मेरे ऊपर कोई नहीं, मेरे अन्यत्र कोई नहीं, सब मेरे नीचे हैं, वहां शुरू हो जाता है पतन। तो ये चारों महाशक्तियों का एक समय के बाद इसी प्रकार से अधपतन प्रारंभ होता है और वो गिरती गिरती महाअंधकार में चली जाती हैं। जब महाअंधकार में चली जाती हैं तो वहाँ पर भगवान ने पहले से महाअंधकार के अंदर एक आइडिया सेल फोन डाला हुआ है कि आप उसको उठाइए, भगवान को SMS करिए कम। तो वो जाती हैं तो उनको अचानक महसूस होता है कि अरे हम कहाँ आ गए, भटक गए रास्ता। तो भगवान को पुकार उठती है और उसके प्रत्युत्तर में भगवान के अंदर से उत्तर आता है। और भगवान का जो उत्तर है, जो सृष्टि को बचाने के लिए, उस अंधकार में जो गिर चुका है उसको खींचने के लिए, उसको कहते हैं प्रेम। दैट इज द लव। तो लव का ओरिजिन, सबसे बड़ी शक्ति, इसीलिए माँ बार बार कहती है प्रेम के ही अंदर रूपांतरण की शक्ति है। परंतु वो कौन सा प्रेम है? वो प्रेम जो अंधकार में कूद जाता है उसको निकालने के लिए वहां से। तो ये जो पहला पेज, पहले दो पेज में हम देखेंगे इसी का वर्णन है, सिंबल डॉन। पहले वो अंधकार जिसके अंदर सृष्टि समा गई है, और फिर उस अंधकार के अंदर भगवान का प्रत्युत्तर, जो प्रेम के अंदर पहले उषा काल की तरह प्रकट होता है। और फिर वो जो प्रेम के प्रति हमारा प्रत्युत्तर, जो बिल्कुल विपरीत है। माता जी से एक बार किसी ने पूछा, माँ कहती द ओनली रिस्पॉन्स टू लव इज लव, बट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, रेजिस्टेंस। भगवान हमको प्रेम देता है, हम रेजिस्ट करते हैं, डाउट्स, हर प्रकार के भगवान को ही उल्हाना देने लगते हैं। तो वहां से हम प्रारंभ करेंगे थोड़ा सा। बुक वन, कैंटो वन, द सिंबल डॉन। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद देवता उठते हैं। एक देव उठान एकादशी भी होती है। बात कर रहे थे प्रदीप भाई कल्चर की, देखिए एक एक चीज। देवता सो रहे हैं, अभी वे भी नहीं जागे हैं। जब सब सो रहे हैं, सब और अंधकार है, एक है जो जाग रहा है, वो हमारे ऊपर वाच करता है, सारी सृष्टि के ऊपर, अंधकार के ऊपर। सो पहला ये सावित्री प्रारंभ कहाँ से होती है? सावित्री इज द डॉटर ऑफ लाइट, लेकिन कहानी कहाँ से प्रारंभ हो रही है? महाअंधकार से। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट। The huge foreboding mind of night alone in her unlit temple of eternity lay stressed immobile upon silence march। अब चित्रित करें कि एक सिनेमा दिखाया जाने वाला है जिसमें भगवान की कहानी, भगवान की, भगवान तो पूर्ण प्रकाश है, कहानी कहां से प्रारंभ हो रही है? पूर्ण अंधकार से। ऐसा अंधकार जहां एक अक्षर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां कुछ घटित होने वाला है। क्या घटित होने वाला है? डिवाइन इवेंट। सृष्टि एक डिवाइन इवेंट है, माया नहीं है, छलना नहीं है, एक डिवाइन इवेंट है। साथ ही वह जो कुछ होने वाला है, सत्यवान सावित्री की कहानी, एक डिवाइन घटना है। इसको केवल एक साधारण स्त्री पुरुष के प्रेम की कहानी नहीं है, ये एक दिव्य घटना होने वाली है। लेकिन उस घटना को होने के लिए पहले, वो डिवाइन इवेंट है द विक्ट्री ऑफ लव ओवर डेथ, लेकिन उसके पहले लव को, उस शक्ति को एक महाअंधकार, उससे लड़ना है। सो अक्रॉस द पाथ ऑफ द डिवाइन इवेंट, कौन खड़ा हुआ है, कौन जैसे वॉच कर रहा है? एक महाअंधकार, यूज फॉरवर्डिंग माइंड ऑफ नाइट। कौन एकमात्र है उस समय? माइंड ऑफ नाइट एलोन इनर अनलिट टेम्पल ऑफ इटर्निटी। मंदिर तो है लेकिन उसमें ना दीपक जला है, ना देव मूर्ति स्थापित है। सृष्टि की वो अवस्था है, ये सृष्टि की अवस्था है। ऑलमोस्ट वन फेल्ट ओपेक इनपेनेट्रेबल। यदि कोई वहां पर उस समय जाकर अनुभव करता, ये निश्चेतना का वर्णन है, तो क्या एक्सपीरियंस करता? ओपेक इम्पेनेट्रेबल, कि इसमें तो भगवान का प्रकाश भी नहीं समा सकता, ऐसी इम्पेनिट्रेबल, किसी प्रकार का प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसी ऐसा एक्सपीरियंस होता वहां पर। इन द सॉम्बर सिंबल ऑफ अ आईलेस म्यूज द अबिज्म ऑफ द अनबॉडीड इन्फिनिट ए फैदमलेस जीरो ऑक्यूपाइड द वर्ल्ड। महाशून्य जिसके अंदर बहुत कुछ संभावना के रूप में है लेकिन कुछ भी प्रकट नहीं हुआ है, फैदमलेस जीरो। बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नथिंगनेस, एक नथिंगनेस ऐसी है जिसमें सब कुछ अनभिव्यक्त है और एक नथिंगनेस ऐसी है जिसमें सब कुछ है लेकिन अभी सृष्ट नहीं हुआ। तो ये दो नथिंगनेस, भगवान के पास भी जाके व्यक्ति कहता है नथिंग, क्यों? क्योंकि उसको आप किसी भी शब्द से परिभाषित नहीं कर सकते, आप परिभाषित करेंगे तो सीमित कर देंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो है और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, ये भी परिभाषा है। श्री अरविंद एक जगह परब्रह्म की कविता है उनकी, परब्रह्म, उसमें वो लिखते हैं ही इज वी कैनॉट से नॉर ही इज नॉट फॉर नथिंग टू इज ए कंसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ अनगेस्ट बोथ टाइम एंड टाइमलेसनेस सिंक इन दैट सी टाइम बिकम्स ए वेव स्पेस ए वांडरिंग ड्रॉप। अद्भुत वर्णन है, काल की गति एक लहर के समान हो जाती है उस चिदाकाश में और स्पेस पूरी ब्रह्मांड का विस्तार एक बूंद के रूप में प्रकट होने लगता है। तो उस भूमि का वर्णन यहां पर है, बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नथिंगनेस रिकॉलिंग द टेनेब्रस वोम फ्रॉम विच इट केम turned from the insoluble mystery of birth and the tardy process of mortality and longed to reach its end in vacant naught। अब उस अंधकार में कोई चीज प्रस्फुटित होना चाह रही है लेकिन नीचे जो अंधकार है, जो नथिंगनेस है, वो उसको बार बार नीचे खींच रहा है। जैसे सुबह उठने का समय हो गया और मम्मी बोलती हैं उठो, है ना, तो क्या रिस्पॉन्स रहता है, थोड़ी देर और। आप करते हो ऐसा कि नहीं करते हो? नहीं करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। नहीं तो ऐसा होता है ना, थोड़ी देर और, फिर वो करते हैं ना कभी कभी। अब वो थोड़ी देर, अच्छा 5 मिनट और, 10 मिनट और। बिस्तर बड़ा प्रिय है, अंधकार बड़ा प्रिय है, इनर्शिया बड़ा प्रिय है, क्यों? उठ के तो हमको एफर्ट करना पड़ेगा। तो कोई चीज प्रिवेंट कर रही है सृष्टि को बाहर निकलने से। यही चीज प्रलयों के बाद भी होती है, प्रलय में सब कुछ बीज रूप में चला जाता है। तो इसलिए शेरविंद कहते हैं फिर से जब प्रारंभ हो रही है सृष्टि, इसलिए सिंबल डॉन है जो कई लेवल्स पर अप्लाई करता है। तो वो जो एफर्ट है उससे उसकी जगह इनर्शिया में जाना है, ग्रेविटेशन के कारण उसमें जाना ज़्यादा। लेकिन हम लोगों को आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्यों? एज इन ए डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, देखिए ये लाइन ही देखिए, एक बड़ी सुंदर लाइन मैंने पढ़ी थी, किसी माउंटेनियर की है। कहता है द जर्नी ऑफ मैनी ऑफ 1000 miles स्टार्ट्स विद 1 infant step। हमको उससे नहीं घबराना चाहिए कि ओ मैं तो चल नहीं पा रहा हूँ, एक ही कदम चल पा रहा हूँ। एक कदम चल के ही दूसरा कदम चलेंगे, दूसरा कदम चल के 10 कदम चलेंगे, 10 कदम चल के 100, 1000, फिर दौड़ेंगे, फिर अचानक हम देखेंगे कि हमको लग रहा था कि वो जर्नी 1000 miles की है, हम तो 2 miles गए तो वो आ गया हाथ पकड़ के हमको दौड़ा के ले जा रहा है। और पहले 2 miles हमको करना पड़ेगा, नहीं तो अचानक ले जाने से आदमी को एस्फिक्सिया हो जाता है, श्वास की कमी हो जाती है। तो एज इन ए डार्क बिगनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, हर चीज अंधकार से प्रारंभ होती है, उससे हमको घबराना नहीं चाहिए। और प्रत्येक अंधकार के अंदर प्रकाश के बीज छिपे हैं और इसीलिए आशा है। लोग कहते हैं, सब देखते हैं चारों तरफ राष्ट्र को, विश्व को, क्या लोग सिनिक हो जाते हैं, सब और अंधकार है। तो आशा कहाँ मिलेगी? टेलीविजन में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, अखबार में नहीं मिलेगी, वो जो डिस्कशन होते हैं ना, चर्चा, उस पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो तो जो थोड़ी बहुत आशा होगी छीन लेंगे, उनका काम ही यही है। वो कहाँ मिलेगी? इस सत्य में मिलेगी कि अंधकार के अंदर भी प्रकाश छिपा है। ये सत्य एक बार हमने पकड़ लिया तो आशा ही आशा है, कितना भी घना अंधकार क्यों ना हो। देखिए इसमें हम लोग दो जगह और इसी चीज, इसी भाव को पढ़ेंगे। डार्क बिगनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, कैंटो 2 में पेज 11, फिर से इसी बात का संकेत है कि अंधकार क्या है। अंधकार प्रकाश का ही आत्म विलोपन है, प्रकाश का ही आत्म गोपन है। जो फिजिक्स में बताते हैं ना, वो ब्लैक होल, ब्लैक होल इज, देयर इज नथिंग लाइक ब्लैक, इट इज ए लाइट को अपने ही अंदर छिपा लेना, दैट इज ब्लैक होल। कैंटो 2 अंतिम 6-7 लाइन, एन एब्सोल्यूट सुपरनैचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड। अंधकार से घबराना नहीं चाहिए, कई बार तो अंधकार आता ही है ताकि हम नवजीवन को प्राप्त कर सकें। अंधकार में क्या होता है, सब कुछ हमारा पुराना छीन लिया जाता है, अंधकार ये कार्य करता है। इसीलिए जब रोज हम लोग सुबह उठते हैं तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि कुछ चिंता, कुछ ये वो लेके सोए थे, सुबह सब मानो ठीक हो गया, उसकी जगह क्या है, पसीना, मल मूत्र, क्योंकि वो सब जो वेस्ट है हमारे अंदर का, सब कुछ जो विषाक्त था उसको कोई चेतना की शक्ति निकाल देती है शरीर के अंदर से और बाहर हम फेंक देते हैं। तो वही प्रोसेस होती है जीवन में, जब अंधकार आता है तो वो प्योरीफाई करने के लिए आता है, ताकि जो कुछ विषाक्त है उसको नहीं, तो एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल। तो जितना बड़ा प्रकाश की संभावना उतना बड़ा अंधकार। एन एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस फॉल्स ऑन मैन समटाइम्स व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड एन आर अराइव्स व्हेन फेल ऑल नेचर्स मीन्स forced out from the protecting ignorance and flung back on his naked primal need, he at length must cast from him his surface soul and be the ungarbed entity within. Ek samay aata hai jab humse sare wo, mata ji ne kaha hai, clutches, props, ve cheezein jinko hum pakad kar swayam ko balshali, samradh, shaktivan samajhte hain, humse chheen liye jate hain। क्यों? ताकि हम उस चीज को पकड़ सकें जो वास्तव में हमको सहारा देती है इन नाना प्रकार के रूपों के थ्रू। तो अगर हम उस चीज को, इसलिए वो ऐसे अवर आते हैं। ये द्रौपदी की जो कहानी है उसका सिंबल है कि धीरे धीरे करके द्रौपदी का मोमेंट ऑफ डिवाइन कौन सा है। अगर द्रौपदी के पूरे जीवन को देख लें तो द्रौपदी का सबसे अद्भुत क्षण कौन सा है, चीरहरण, isn't it? इनफैक्ट द्रौपदी शब्द से ही सबसे पहले ध्यान वहीं जाता है। वो जन्म लिया उन्होंने, यज्ञ से बड़ी हुई, विवाह हुआ, ये सभी तो स्पेशल मोमेंट थे, लेकिन सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा द्रौपदी का है, चीरहरण। उसमें क्या होता है, द्रौपदी क्या एक्सपीरियंस करती हैं, मेरे 5 शक्तिशाली पति व्यर्थ हैं, भीष्म व्यर्थ हैं, गुरु द्रोण व्यर्थ हैं, मेरे ससुर व्यर्थ हैं, सब व्यर्थ हैं। स्वयं उसका बल क्षीण हो जाता है उस समय, दैट मोमेंट। देखिए लाइन, एन एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस समटाइम्स फॉल्स ऑन मैन व्हेन ही ड्रॉज नियर टू गॉड। तब उनको ये ध्यान, जरूर उन्होंने सावित्री उनके अंदर थी, तब उनको ध्यान आता है कि नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो क्षण मेरे लिए आया ही केवल कृष्ण के साथ तादात्म्य के लिए है। अब तक तो वो केवल सखा थे, आज एक होना है, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये वही चीज़ का वर्णन हम सबके जीवन में, सावित्री के जीवन में भी वो क्षण आया है। ये जो फर्स्ट कैंटो और सेकेंड कैंटो, फर्स्ट कैंटो आप देखेंगे इसके ठीक एक पेज पहले, This was the day when Satyavan must die. You know, last it ends with that. सावित्री ने चुनाव किया है सत्यवान का, एंड सत्यवान हैज टू डाई, पेज 210 फर्स्ट कैंटो का एंड इससे होता है। सिंबल डॉन उस दिन का भी वर्णन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। अंत में एंड होता है इससे कि दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। तो लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है, रानी के मन में, सावित्री की माँ के मन में ये प्रश्न उठा था कि मेरी बेटी को ये सब क्यों झेलना पड़ा है, उसने क्या बुरे कर्म किए थे, उसने तो जन्म से किसी चींटी को भी दुख नहीं पहुंचाया है। चींटी तो क्या, किसी भी जीव को, एक फूल पत्ती हर चीज के प्रति उसने एक कोमल करुणा का भाव लेकर के उसने जीवन जिया है। क्या इस धरती पर एक व्यक्ति बिना किसी दुख के जीवन नहीं जी सकता? ये प्रश्न करती है बाद में कि ये क्या संभव नहीं है, मेरी बेटी को, उसने क्या किया है। तो सावित्री के जीवन में वो अवसर आया है, दिस वॉज द डे व्हेन सत्यवान मस्ट डाई। तो श्री अरविंद कहते हैं क्यों आया है, क्योंकि वो सावित्री के लिए एक दृष्टि से महाअंधकार का क्षण है और वही क्षण सावित्री के लिए एक दूसरी दृष्टि से एक अद्भुत अलौकिक ईश्वर के साथ पूर्ण तादात्म्य का क्षण है। अगर हम सावित्री के पूरे योग यात्रा को देखें तो उसके पहले जब सावित्री योग करती हैं, 12 महीने सत्यवान के साथ जीवन व्यतीत करती हैं, लेकिन उनका सबसे शक्तिशाली रूप कब आता है, जब वो मृत्यु का साक्षात्कार करती हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है एब्सोल्यूट। तो उसी डार्क बिगिनिंग से इसी भाव को एक और जगह पेज 632 पे हम लोग आ जाए, कई जगहों पर ये चीज थॉट आता है ना, शीर सागर कहीं बीच बीच से भी थोड़ा टच करते रहें, कोई एकदम जरूरी नहीं कि सिखाए हुए तरीके से राइट फ्रॉम लाइन 1 to देर इज ए जॉय इन दिस ना, सावित्री के अंदर एक कनेक्टिविटी है। ओके, पेज 632 अगेन अंतिम 10-12 लाइन, ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, या उसके भी कुछ लाइन पहले हम लोग देखें, आउट ऑफ द वॉइड दिस ग्रैंड क्रिएशन रोज, फॉर दिस द स्पिरिट केम इन टू द एबिस। वही जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वर्णन, वही वर्णन है समरी में कि इस महा अंधकार में, महाशून्य में भगवान ने स्वयं को डाल दिया और चूंकि वो उसमें विद्यमान है, इन नाइट्स एंड चार्ज विद इट्स पावर मैटर्स अननोइंग फोर्स, जड़ तत्व के अंदर उन्होंने स्वयं को बांध दिया। ये हमारे यहाँ देखिए कितनी अद्भुत स्टोरीज हैं, श्री कृष्ण को यशोदा माँ क्या करती हैं, ओखली में बांध देती हैं, तुम मक्खन खुद खाओ ठीक है, अपने घर में खाओ ठीक है, दूसरे के घर में जाकर और तुम तोड़ के सबको बांट रहे हो, ये कौन सा सोशलिज्म है। तो श्री कृष्णा बोलते हैं ये डिवाइन सोशलिज्म है, मैं यही स्थापित करने के लिए आया हूँ, डिवाइन सोशलिज्म, कोई चीज़ किसी की अपनी नहीं होती, सब कुछ सबका होता है। तो यशोदा माँ सब कंप्लेन करते हैं, हमारा मक्खन, कहते ठीक है इसको ओखली से बांध कर, अज्ञान है ना, वो अज्ञान से जन्मे हैं तो वो पोषित कर रही हैं, लेकिन उनको खुद नहीं मालूम है कि कौन है, ओखली में बांध कर 2 पेड़ से लपेट देती हैं। भगवान कहते तो बहुत पहले से मैंने किया हुआ है, आपने को जड़ तत्व से बांधा है, आप तो मुझे जीवित तत्व से बांध रहे हो। तो क्या करते हैं वो, पेड़ के अंदर से देव पुरुष प्रकट हो जाते हैं, या जो राम की कहानी है कि शिला को टच करते हैं उसमें से देव रूप में अहिल्या प्रकट होती है। दिस इज द स्टोरी सिंबल कि उस जड़ तत्व में भगवान ने स्वयं को छिपाया हुआ है, तभी तो वो संभव है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर देखिए उस चीज को श्री अरविंद कितने सुंदर ढंग से, एंड फॉर दिस द स्पिरिट केम इन टू द एबिस एंड चार्ज विद इट्स पावर मैटर्स अननोइंग फोर्स, उसके पीछे कौन है, स्पिरिट की पावर है। इन नाइट्स बेयर सेशन टू कैथेड्रल लाइट, इन डेथ्स रेल्म रिपैट्रिएट इमोर्टैलिटी, मृत्यु के घर में जाते हैं भगवान अमृतत्व स्थापित करने के लिए। ये होता है सावित्री का एपिक पार्ट। हम लोग रामायण महाभारत उसमें अंधकार प्रकाश की लड़ाई है, लेकिन ये कैसी लड़ाई है कि भगवान सीधा अंधकार की गुफा में जाकर किस लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं वहां अमृतत्व स्थापित करूंगा, रिपैट्रिएट इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी को वहां से भगा दिया गया है, कानून बना दिया गया है, यहां कोई इमोर्टल नहीं होगा। नहीं, मैं वहां स्थापित करूंगा, इन डेथ्स रियल्म रिपैट्रिएट इमोर्टैलिटी। देखिए मतलब रिपैट्रिएट, लुक एट द वर्ड, ए मिस्टिक स्लो ट्रांसफिगरेशन वर्क्स, ऑल अवर अर्थ स्टार्ट्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन द स्काई। सब कुछ प्रारंभ कहाँ से होता है? कीचड़ कादो, और अंत कहाँ होता है? आकाश की ओर। एंड लव दैट वॉज वंस एन एनिमल्स डिजायर, देन ए स्वीट मैडनेस इन द रैप्चरस हार्ट, एन आर्डेंट कॉमरेडशिप इन द हैप्पी माइंड बिकम्स ए वाइड स्पिरिचुअल यर्निंग स्पेस। वही प्रेम जो एक पशु के रूप में प्रकट होता था, कुछ नहीं केवल एक डिजायर, वही प्रेम जो बाद में हृदय के अंदर एक मैडनेस के रूप में, वही प्रेम जो एक मन के स्तर पे कंपेनियनशिप के रूप में प्रकट होता है, वही फिर रूपांतरित होकर भक्ति। ब्यूटिफुल, माता जी ने कितना सुंदर वर्णन इसका। माँ कहती है, देर इज ओनली वन लव, द डिवाइन लव, विच इन ह्यूमन बींग्स चेंजेस इन टू लव फॉर द डिवाइन। पहले तो डिवाइन लव आता है मनुष्य के अंदर, वो लव फॉर द डिवाइन में, लेकिन लव फॉर द डिवाइन में सीधा नहीं चेंज, सीधा तो वो अंधकार में चला जाता है, तो धीरे 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 करके अंत में बिकम्स ए वाइड स्पिरिचुअल यर्निंग स्पेस, ए लोनली सोल पैशंस फॉर द अलोन, द हार्ट दैट थ्रिल, द हार्ट दैट लव्ड मैन थ्रिल्स टू द लव ऑफ गॉड। ए बॉडी इज हिज चेम्बर एंड हिज श्राइन। हाउ ब्यूटिफुल। तो यहीं पर इसका ये वर्णन है कि डार्क बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स, कोई बात नहीं है, हाँ सब कुछ अंधकार से प्रारंभ होता है। फिर एक वर्णन आता है कि अर्थ उस अंधकार में अपने भाग्य को भूलकर, अपने नियति को भूलकर चक्कर लगा रही है, सीजन्स बदलते जा रहे हैं, उस अनकॉन्शियस है, पृथ्वी का योग है इसमें, पृथ्वी का योग है, पृथ्वी योग करती है। हमारे पुराणों में कहानी है, लेकिन बहुत बाद में समझ आता है कि धरती पर जब भार बढ़ जाता है असुर तत्व का और देव तत्व कम हो जाता है, तो कोई ऋषि मुनि नहीं जाते हैं भगवान विष्णु के पास, धरती माता जाती है, शी इज ए लिविंग गॉडेस, और भगवान को बहुत प्रिय हैं, भगवान की सब बेटियों में इतने सारे उनके अंश निकले हैं, जो हम कह सकते हैं भगवान की शक्तियां जो उनकी बेटियां हुई, लेकिन सबसे ज्यादा भगवान किसको प्यार करते हैं? पृथ्वी माँ को। उन्होंने वो कार्य अपने ऊपर उठाया जो कोई नहीं उठा सकता। हमारे यहाँ होता है ना, बेटियां होती हैं तो एक बेटी कहती, कोई बात नहीं मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी, लेकिन वहां पर मैं अपने घर का कल्चर स्थापित करूंगी। तो सब घरों में यही कहानी होती है, जब शादी के बाद औरत आती है तो पहले वो उस कल्चर को स्वीकार करती है, लेकिन वो भूलती नहीं अपने घर का कल्चर। कभी नहीं भूलती, ये भ्रांति है लोगों में, भूल गई। थोड़े समय बाद जब बच्चे होते हैं तो उनको क्या सिखाती है? वो कल्चर जो उसने सीखा था, करेक्ट। धीरे धीरे करके, और फिर वो बच्चे बड़े होते हैं तो वही आदमी जो उसको, अरे वाह मेरे बच्चे तो बड़े बहुत अच्छे हैं, तब वो उसको स्वीकार करता है। दिस इज द ब्यूटी। और इस प्रकार से वो दो कल्चर्स को जोड़ देती है, ये काम है, ये प्रेम करता ही यही है। देर इज सम चेंज बिकॉज ऑफ दैट, तो दो को जोड़ने का कार्य, इसीलिए कहते हैं ना नारी का कार्य ये होता है चीजों को जोड़ना, धरती का प्रिंसिपल है उसके अंदर, नॉट टू ब्रेक, शी जॉइंस थिंग्स। सो यहां पर अर्थ गॉडेस, तो वो क्या जोड़ती है? भगवान को जड़ तत्व के साथ, और ये काम केवल अर्थ गॉडेस करती है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है, किसी भगवान को पहले नहीं प्रणाम करते हैं, धरती है ना, हम लोग जब छोटे थे तो पहले उठ के, उसके बाद सूर्य देवता, अन्य देवता, शी इज द फर्स्ट मदर। और कितना कठिन काम उन्होंने अपने ऊपर लिया है, ये धरती का योग है। जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि क्या ह्यूमैनिटी को बचा लिया जाएगा, कहते हैं इसके बारे में मैं निर्णायक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन पृथ्वी को जरूर बचा लिया जाएगा। और हम लोग कहेंगे पृथ्वी को बचा के क्या है, हम लोग तो बहुत सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं ना, असली चीज है पृथ्वी को बचाना, पृथ्वी की चेतना को बचाना, चाहे उसमें धरती के ऊपर महाविनाश हो, दैट इज महाभारत। महाविनाश के थ्रू भी यदि पृथ्वी की चेतना बचा ली जाए, पृथ्वी की चेतना में जो कुछ विकसित हुआ है, जो कुछ सुंदर है, जो कुछ अनमोल है, उसको बचाना जरूरी है, मनुष्यों के नंबर्स को बचाना जरूरी नहीं है। ये हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य कितने नंबर ऑफ पीपल, नहीं, उस चेतना में जो कुछ अनमोल है, जो अमूल्य अमूल्य है, जो कुछ दिव्यत्व तो अब तक प्रकट हुआ है, उसको बचाना आवश्यक है। दैट इज द सेंस, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वह बचाना। तो अर्थ का योग है इसमें, और अर्थ के योग को, पृथ्वी के योग को आगे बढ़ाने के लिए मनुष्य आता है। मनुष्य योग नहीं करता, योग तो पृथ्वी और भगवान के बीच होने वाली प्रोसेस है। पृथ्वी के अंदर साइकिक प्रिंसिपल है और इस कारण भगवान और पृथ्वी का एक संबंध है, कहीं और नहीं पाया जाता है। ये 33 प्रिंसिपल महर्षि अरविंद बताते हैं। तो जब पृथ्वी बनी ही योग के लिए है, कितनी अद्भुत बात है, तो वो योग करती है। इसीलिए जब श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मैं तो आज तुझे बता रहा हूँ, तू ये मत सोच कि पहली बार बता रहा हूँ, ये तो मेरा एक रीप्रिंट वर्जन है, इसकी तो अनेकों प्रतियां हो गई। तो अर्जुन कहते हैं ओरिजिनल प्रिंट कब हुआ था, वो तो मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था। कहते हैं आप इस शरीर में विवस्वान सूर्य, तो पहले भगवान पृथ्वी के अंदर योग कैसे करते हैं, स्वयं को उस दैदीप्यमान सूर्य के रूप में प्रकट करते हैं, मैटर के रूप में वो सूर्य बन जाते हैं। दैट्स व्हाई सन इज द सिंबल ऑफ द सुपर माइंड। अब सूर्य बनकर वो धरती को घुमाते हैं और प्रत्येक बार जो धरती रोटेट करती है उसके अंदर कोई सीजन्स, अनेक अनेक चीज प्रकट होती हैं एंड इवोल्यूशन होता है। सो धरती के लिए वो इस रूप में प्रकट करते हैं अपने आप को। सो यहाँ पर धरती की बात है, और जब घूम रही है धरती, फिर नेक्स्ट आता है कि इस महाअंधकार में भी उसके अंदर कोई चीज छिपी है, दबी है, ये भाव है, ये संकेत है जो निकलना चाह रही है। नेक्स्ट पेज पर लगभग बीच में पेज टू, इवन इन दिस अल्टीमेट डिसोल्यूशन स्कोर, महाअंधकार है जिसमें केवल एक धरती एक शैडो की तरह स्पिन कर रही है उस महाअंधकार में, लेकिन उसमें भी देयर लर्क्ड एन अनरिमेम्बरिंग एंटिटी, सर्वाइवर ऑफ ए स्लेन एंड बेरिड पास्ट, अनरिमेम्बरिंग एंटिटी। देखिए ये रोज हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को, सो जाते हैं सब विस्मृत हो जाता है, कौन माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सब विस्मृत, भगवान विस्मृत, इवन हम स्वयं को भूल जाते हैं। नींद में कोई है, आप नाम बुला रहे हैं, अरे उठो 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 फला फला उठो, कोई वो नहीं। फिर भी कोई चीज है जो जब हम जागते हैं तो जोड़ देती है, कल हम थे आज हम हैं, वही हम हैं, कोई चीज है जो स्मृति के रूप में हमारे अंदर जोड़ देती है। लेकिन जब गहरी नींद में होते हैं, नथिंग, आप उठा रहे हैं उठो उठो, कुछ नहीं, कोई बाहर लक्षण नहीं, अनकॉन्शियस है सब चीज के प्रति, लेकिन कोई चीज उसके अंदर फिर भी जागी रहती है जो कनेक्ट कर देती है। जैसे हम उठते हैं एक क्षण के लिए, कई बार कभी कभी ऐसा भी होता है गहरी नींद से जब कोई जागते हैं, नाम बुला रहे हैं तो भी पूरी तरह आदमी सचेत नहीं है, फिर उठता है फिर ओ अच्छा, फिर ओ अच्छा के साथ पास। तो यहाँ अनरिमेम्बर्ड एक चीज है, सर्वाइवर ऑफ ए स्लेन एंड बरीड पास्ट, ये महाप्रलय के बाद फिर से तब भी और मृत्यु के बाद व्यक्ति की कोई चीज है जो कंटिन्यू करती है, वो चैत्य प्रिंसिपल का वर्णन है इसमें, साइकिक प्रिंसिपल, कंडेम्ड टू रिज्यूम द एफर्ट एंड द पैंग, अद्भुत लाइन है, कंडेम्ड, हम लोग के पास कोई एस्केप रूट नहीं है, एक ही एस्केप रूट है दिव्यत्व में रूपांतरण, देयर इज नो अदर वे, इज ओनली वन वे। आप प्रयास करके नहीं ऐसे कर लें, लोग तो बिल्कुल विपरीत रास्ता ले लेते हैं, सुसाइड, इट इज नॉट एन एस्केप एट ऑल। तो ईश उपनिषद कहती है ना, असूर्या नाम ते लोक, महाअंधकार में चले जाते, फिर से वो एफर्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास सिवाय इस रूट पे बढ़ने के। जब एक चीज़ ये स्पष्ट हो जाती है तो फिर नेचुरल है आदमी चाहता है कि मैं 100% इसको दे दूँ। सिंसेरिटी का जन्म वहाँ से होता है। जब तक हमको लगता है ऑप्शंस हैं तब तक हम आधा अधूरा, जब लगता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके तो फिर क्यों ना हम जितने जल्दी पूरा अपना इसमें डालें। तो वो कोई चीज़ है जो फिर से एफर्ट एंड द पैंग, लेकिन एफर्ट के साथ क्या होता है, पेन होता है, दुखता है शरीर। फिजिकल एफर्ट करते हैं तो फिजिकल बॉडी दुखता है एक सीमा के परे, इमोशनल एफर्ट करते हैं तो हमारा इमोशनल बॉडी दुखता है। इमोशनल एफर्ट क्या होता है, ईर्ष्या पॉजिटिवनेस ये सब का त्याग, तो क्या होता है, पेन होता है। मेंटल एफर्ट करते हैं तो मेंटल पेन होता है, ओह बहुत थक गए, लाइफ डिवाइन क्यों लिखी श्री अरविंद ने, एक लाइन में लिख देते सब भगवान है, मेंटल पेन। स्पिरिचुअल एफर्ट करते हैं तो वो दूसरे प्रकार का, ओफ सब दिन ये क्या सतत स्मरण कितना कठिन है, कोई सरल रास्ता नहीं है, फैक्ट है कि नहीं है। यही एक रास्ता है, उपनिषद भी कहती है ना बड़े सुंदर ढंग से, एवं त्वई, और कोई रास्ता नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू द, ये एफर्ट है या पेन है जो भी है, इस रास्ते को वर्ण करके आगे बढ़ना है। रिवाइविंग इन अनदर फ्रस्ट्रेटेड वर्ल्ड एन अनशेप्ड कॉन्शियसनेस डिजायर्ड लाइट एंड ए ब्लैंक प्रेशियंस यर्न टुवर्ड्स डिस्टेंट चेंज। क्या होता है जब हम माता जी से पहली बार हम सबका जो टच मिलता है, हम लोगों ने सुना होता है ट्रांसफॉर्मेशन दिव्य, कोई कोई लोग और कंफ्यूजन, सब सब तरफ से शब्द ये वो, उस समय कुछ क्लियर नहीं होता कि हम किस अग्नि कुंड में हाथ पांव रख रहे हैं। कूद जाते मां, अरे वाह क्या नया जगत आएगा, डिस्टेंट चेंज। लोग सोचते हैं कि आज हम मुड़ गए, कल जुड़ गए, परसों हम आश्रम आ गए, चौथे दिन रूपांतरण हो जाएगा। 40 साल बीत जाते हैं एक छोटी चीज बदलने में। तब लोग कहते हैं हे भगवान, अरे भगवान ने तो पहले ही कहा था डिस्टेंट चेंज है, ये आज की चीज नहीं है, ये तो जन्मों की चीज है। तब फिर से एक नया उत्साह आता है, कोई बात नहीं, यही एक रास्ता है। तो यहां पर कोई चीज होती है जो अचेतनता में भी भगवान की ओर मुड़ जाती है, प्रकाश की ओर मुड़ जाती है, जैसे एक पेड़ के अंदर अपने आप प्रकाश की ओर प्रवृत्ति होती है मुड़ने की। तो हम सबके अंदर कोई चीज होती है जो प्रकाश की ओर मुड़ना चाहती है, या उसका वर्णन है। ब्लैंक प्रेसियंस यर्न टुवर्ड्स डिस्टेंट चेंज। अब बड़ी सुंदर लाइन है ये देखिए, एज इफ ए चाइल्ड लाइक फिंगर लेड ऑन ए चीक रिमाइंडेड ऑफ द एंडलेस नीड इन थिंग्स, द हीडलेस मदर ऑफ द यूनिवर्स एन इन्फेंट लॉन्गिंग क्लस्ट द सॉम्बर वास्ट। अब यहां पर वो कौन सी मदर है, एक तो माता हमारी जगन माता माँ अदिति, एक डार्क मदर, बच्चा उठ गया, ऐसी भी कुछ घरों में स्थिति होती है, बच्चा उठ गया है माँ सो रही है, बच्चे को भूख लगी है, माँ माँ उठो माँ उठो, माँ कह रही है मुझे सोने दे, माँ उठो देखो मुझे भूख लगी है, चाइल्ड लाइक फिंगर। माँ को कंपल्शन होता है उठ के बच्चे के लिए दूध बनाने के लिए, भाई बिकॉज बच्चे की नीड है। तो वो चैत्य का जो भ्रूण है वो जागता है और वो साथ में सारी प्रकृति जो अंधकार में डूबी है उसको जगाता है। तो यहाँ जो डार्क मदर इनकॉन्शियंट, जब वो चैत्य जागता है तो सारी प्रकृति के अंदर उथल पुथल होने लगती है। वे चीज़ें जो पहले हमको लगता था नॉर्मल नेचुरल हैं, उन्हीं के प्रति लगता है नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, बदलना चाहिए। प्रकृति सोना चाहती है पर चैत्य पुश करता है, नहीं 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 पढ़ो बैठ के लाइफ डिवाइन पढ़ो या सावित्री पढ़ो, वही चीज़ तो लेके आती है। अगर आप हम लॉजिकली देखें तो कल मनोज भाई का फोन आया, मैंने कहा देखिए मेरी पूरी बात हो गई अर्चना जी से, बोले नहीं बड़ा अच्छा ग्रुप आया है देखिए, मैंने बोला वो तो नेचुरल है बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इस गर्मी में अगर कोई यात्रा करके आ रहा है सावित्री के लिए तो आगे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नैनीताल में तो एक बार लोग जाते हैं वेदर के लिए। लेकिन अगर मई के महीने में झुलसती धूप में कोई इतने दूर से आ रहा है तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी अगर मैं ऐसा विचार भी मन में लाऊं कि ग्रुप जेन्युइन नहीं है। इट इज अ साइन ऑफ द संकेत है, नहीं तो लोग कहाँ, लोग कहते अपने घर में बैठो, अपना काम धाम चल रहा है, टेलीविजन देखो, चुनाव चल रहे हैं, एग्जिट पोल के नतीजे देखो, ये देखो वो देखो, है ना। बट टू कम हियर इट इज इन्फेंट। तो इसमें क्या हुआ, प्रकृति का एक भाग कह रहा होगा चलें कि नहीं चलें, अरे छोड़ो नवंबर में जाएंगे, ये सब एक पार्ट कहते हैं ना ऐसे। लेकिन जो चैत्य छोटा बेबी है, नहीं नहीं चलो ना प्लीज चलो, फिर अल्टीमेट चलो अब मन बना लिया है चलते हैं। तो वही चीज हमारे अंदर, एन इन्फेंट लॉन्गिंग क्लस्ट द सॉम्बर वास्ट। देखिए लाइन इन्फेंट लॉन्गिंग, इससे एक और कहानी याद आती है वामन अवतार की, इन्फेंट लॉन्गिंग क्या कहते हैं, जाकर राजा बलि को तीन पग भूमि बस चाहिए। भगवान को तीन पग भूमि क्या, एक पग भूमि का मान गए तो समझ लीजिए छोड़ेंगे नहीं। तो राजा बलि तो कहते हैं हाँ तीन पग ले लो। इन्फेंट वामन चैत्य का प्रतीक है, कहते हैं अच्छा चलो एक पग, स्वर्ग आकाश सब माप लिया। अब वो घबराते कि किसको, चैत्य है ना। नेक्स्ट अब क्या, धरती माप ली, अब बचा क्या, मेरा अहंकार है अब यही बचा है, सब तो छीन लिया जो अहंकार से जुड़ा हुआ था, मेरी भूमि, मेरे बच्चे, मेरे पति पत्नी, सब तो आपने छीन लिया, अपना बना लिया, अब मैं ही बचाऊं इसको भी अपना बना लो। दिस इज द थ्री स्ट्राइड्स ऑफ वामना, इज द स्टोरी ऑफ द चैत्य, इन्फेंट लॉन्गिंग क्लस्ट द सॉम्बर वास्ट। कृष्ण अगेन स्टोरी ऑफ द साइकिक बीइंग, जेल के अंधकार के अंदर इन्फेंट लॉन्गिंग, और क्या कर देंगे, पूरे भारत भूखंड में एक धर्म का राज स्थापित करेंगे। स्टार्ट कहां से करते हैं, जेल में। उसी प्रकार से चैत्य की अवस्था, इन्फेंट लॉन्गिंग क्लस्ट द सॉम्बर वास्ट। लुक एट दिस ब्यूटिफुल लाइन। अब वो जब लॉन्गिंग होती है तो नेचुरली उसकी हेल्प करने के लिए इस इन्फेंट लॉन्गिंग के प्रत्युत्तर में क्या होता है, इनसेंसिबली समवेयर ए ब्रीच बिगैन, ए लॉन्ग लोन लाइन ऑफ हेजिटेटिंग यू। अब ये उषा काल का वर्णन है, लाइक ए वेग स्माइल टेम्पटिंग ए डेजर्ट हार्ट ट्रबल्ड द फार रिम ऑफ लाइफ ऑब्सक्योर स्लीप। जैसे ही चैत्य के अंदर ये भाव जागता है, कहीं पर कहीं चिदाकाश में भगवान अपनी दृष्टि हमारी ओर करते हैं, और डेजर्ट हार्ट अचानक हृदय जो एक मरुभूमि की तरह है, हम लोग लगता है कि जीवन बड़ा अच्छा है लेकिन शमशान भूमि है, तो शमशान भूमि में कहीं पर भगवान की मुस्कान ऐसे आती है मानो मरुभूमि में मेघ आकर के डेजर्ट हार्ट, शायद यहां भी कुछ हरा भरा खिल उठेगा। फिर क्या होता है, अराइव फ्रॉम द अदर साइड ऑफ बाउंडलेसनेस एन आई ऑफ डेटी फियर्ड थ्रू द डम डीप्स ए स्काउट इन ए रिकॉग्नाइजेंस फ्रॉम द सन। अब माँ भगवती इन रिस्पॉन्स टू दिस अर्थ, पृथ्वी के पुकार, और वही पृथ्वी की पुकार, योग पृथ्वी कर रही है, वही पुकार मनुष्य के अंदर अभिप्सा का रूप लेती है। पृथ्वी के अंदर वो डम्ब है, वो व्यक्त शब्दों में व्यक्त नहीं है परंतु है, इसलिए जो पत्थर हैं उनमें भी संगीत बंद है, इसलिए पौधों के अंदर प्रकाश की ओर मुड़ने की चाह होती है, इसलिए पशुओं के अंदर मनुष्य को देखकर एक आता है कि ये तो मेरे से बड़ा है, कोई उनको सिखाता नहीं है, उन्होंने डार्विन का सिद्धांत नहीं पढ़ा है, लेकिन भयानक से भयानक पशु मनुष्य से घबराता है, उसको पता है मनुष्य की आंखों में एक ऐसा प्रकाश है जो मेरे से ऊपर है, और वो मनुष्य के पास जाना चाहता है मनुष्य से, क्योंकि उसके अंदर एक अभिप्सा है, उसका नेक्स्ट स्टेप यही है, और इसी कारण मनुष्य के अंदर वो भगवान की अभिप्सा करो, और उस अभिप्सा के प्रत्युत्तर में भगवान का उत्तर, और जब वो प्रकाश आता है, इट सीम्ड एमिड ए हैवी कॉस्मिक रेस्ट द टॉर्पर ऑफ ए सिक एंड वेरी वर्ल्ड टू सीक फॉर ए स्पिरिट सोल एंड डेजोलेट टू फॉलन टू रिकलेक्ट फॉरगॉटन ब्लिस. एक ऐसे जगत में वो प्रकाश आता है जो खुश रहना ही भूल गया था. देखिए कल्पना कीजिए, आज हम लोग इतना बच्चे केयरफ्री लाइफ लीड करते हैं कि कभी कभी माता पिता परेशान हो जाते हैं कि इसको अपनी चिंता है कि नहीं है, है ना. अगर आप एक दो जनरेशन पहले चले जाइए, जन्म से ही कोल्हू के बैल की तरह लड़कियां थोड़ी बड़ी हुई नहीं कि चूल्हा चक्की शुरू कर शादी के बाद, नहीं तो क्या होगा. आप ट्राई करो आज की लड़की को ये बोलने के लिए, क्या होगा, मैं कोई किसी पर निर्भर नहीं हूं, मैं खुद कमाऊंगी, दो नौकर रख लूंगी घर में. एंड शी इज राइट, वाई शुड शी बी डिपेंडेंट. उसी तरह लड़कों को पढ़ाई कर, पढ़ाई कर किंडरगार्टन से पेरेंट्स, क्यों, नहीं तो घास छीलेगा. तो बच्चा बोलेगा कोई बात नहीं, आजकल घास छीलने वाले भी मैं देखता हूँ नेशनल ज्योग्राफिक में, अच्छा कमाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस नहीं थे. तो श्री अरविंद माता जी कब आते हैं, एक ऐसे समय पर जब मनुष्य खुश रहना भूल गया था. अगर हम लोग देखें दो जनरेशन पहले का बचपन, जन्म से नाना प्रकार के बंधन बोझ लेकर पैदा होते थे, गरीबी का बोझ, ऊंच नीच का बोझ, दासता, अनेकों प्रकार के दासत्व को लेके कैसा रहा होगा हम लोगों के पेरेंट्स का, वो शायद हंसना नहीं जानते होंगे. और वो कहते भी थे हम लोग देखो कितने कर्मठ थे, इसका उनको बाद में अभिमान हो जाता था, वो समझ नहीं पाते थे आज के बच्चों को, अरे अब क्या करें, वो समय बदल गया है, अब जबरदस्ती गरीबी का नाटक थोड़ी करना है. पर उस समय एक्चुअल था, एक साइकिल भी होती थी तो लगता था कि बहुत बड़ी बात है, वो मोटर गाड़ी का स्वप्न जन्म के साथ. तो ये प्रारंभ में क्या होता है जब डिवाइन एडवेंट, तो ऐसा होता है जब माँ श्री अरविंद आए होंगे, सर्वत्र उन्होंने अंधकार को देखा होगा, नाना प्रकार की चीजें. एक छोटी सी घटना है, श्री अरविंद के पास एक महिला शिष्य जिया देवी वो आई. कहा जाता है उनके बारे में कि वो माँ यशोदा थी अपने पूर्व जन्म में. खैर जो भी हो, रामेश्वरम का दर्शन करने निकली थी और थोड़ा डिटूर लेकर यहाँ आ गई, तो फिर गई नहीं. तो शेरविंद ने कहा तुमको रामेश्वरम नहीं जाना, अरे जब लिविंग रामेश्वर को देख लिया तो वहाँ क्यों जाऊँ. तो एक दिन वो कहती हैं शेरविंद से, भगवान मुझे अगले जन्म में लड़का बनाना. क्यों, अरे आपको क्या पता है, आपको मालूम भी है कुछ, कितनी मुश्किल से मैं आई हूं, एक नारी का जीवन क्या होता है आपको तो मालूम नहीं है, कितनी कठिनाई से मैं यहां तक पहुंची हूं, अगले जन्म में लड़का हुई तो कम से कम मुझे ये सब समस्या नहीं होगी. श्री अरविंद मुस्कुराते हैं और कहते देखिए ये डिवाइन का सोल्यूशन है, कहते चिंता नहीं करो, मैं युग को ही परिवर्तित कर रहा हूं, आने वाले समय में लड़कियां उतनी ही स्वतंत्र होंगी जितने पुरुष हैं. ये भगवान का सलूशन है. और नियम कानून नहीं बनाते हैं, वो पुराना नियम तोड़ देते हैं, तो अपने आप उसकी जगह एक नई चीज सृष्ट हो जाती है. तो यहां उसका टू फॉलन टू रिकलेक्ट फॉरगॉटन ब्लिस, आनंद सबके अंदर है, लेकिन जो हंसना भूल गया हो उसको मुस्कान दे देना, यही तो उनका काम है. इंटरवीनिंग इन ए माइंडलेस यूनिवर्स इट्स मैसेज क्रेप्ट थ्रू द रिलक्टेंट हश. देखिए रिलक्टेंट, सुनना नहीं चाह रहा है, ओंग रहा है कि क्या लाइव डिवाइन पे लेक्चर हो रहा है, कब खत्म होगा, रिलक्टेंट. पर फिर भी वो जो शब्द जा रहे हैं अपना कार्य कर रहे हैं, कॉलिंग द एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉय एंड कॉन्करिंग नेचर्स डिसल्यूजन ब्रेस्ट कंपेल्ड रिन्यूड कंसेंट टू सी एंड फील. अल्टीमेटली भगवान का प्रभुत्व, कॉन्करिंग नेचर्स डिसल्यूजन ब्रेस्ट. हम लोग अनेकों प्रकार के डिसिल्यूजन, माँ कहती सिनिक कभी नहीं बनना चाहिए, अरे ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया, ये पार्टी भी फेल हो गई, वो पार्टी भी फेल हो गई, तीसरी चौथी सब सब बेकार है. लेकिन भगवान जिसको पकड़ लेते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा, बोलेगा होने दो, जो हमारा मालिक है वो तो सर्व सक्षम है, सब बेकार होंगे, लेकिन वो तो जानता है, सबको नचाता है अपने अपने ढंग से. यहाँ पर उसका कॉन्करिंग compelled renewed consent to see and feel. A thought was sown in the unsounded void. Sri Aurobindo आर्य के द्वारा क्या कर रहे थे? बीज बो रहे थे प्रकाश के. A thought was sown in the unsounded void. A sense was born within the darkness depths. A memory quivered in the heart of time. As if a soul long dead were moved to live, but the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past, and all that was destroyed must be rebuilt, and old experience labored out once more. यही प्रत्येक राष्ट्र के साथ, मानव समूह के साथ और व्यक्ति के साथ होता है. अब हम लोग कभी अपना बचपन देखें, बचपन में क्या हम सभी लोग यही गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, ये सब करते थे ना
जी.
अचानक माँ आ गई, जीवन एक, तो वास्तव में इस जीवन में हम नहीं जुड़ रहे. हम जुड़े उनसे सभी जीवनों में, लेकिन हम भूल गए थे. हम भूल गए थे लेकिन भगवान नहीं भूले. सबसे बड़ी बात ये, गीता में अर्जुन कहते हैं ना कि जो योग कर रहा है वो मर गया आधे रास्ते तो क्या होगा. लोग अक्सर पूछते हैं कि हम बड़ा कठिन योग है तो हम नहीं कर पाए तो हमारा क्या होगा. अरे अपने ऊपर डिपेंड क्यों कर रहे हो? जिम्मेदारी किसने ली है? उसको जिम्मेदारी सौंपी है कि नहीं? अगर सौंपी है तो ये प्रश्न नहीं आएगा. नहीं सौंपी है तो हमारा क्या होगा? जिसको सौंपी है वो तो कभी नहीं सोता, वो नहीं भूलता, ठीक ढूंढ लेगा जहां भी हम होंगे, पकड़ करके मुंडी घुमा देगा कि देखो मेरे को पहचानो. अरे आप, हाँ हाँ यही रास्ता है. सो यहाँ पर उसका वर्णन है. एज इफ ए सोल लॉन्ग डेड, उसी प्रकार राष्ट्र के साथ होता है. हम लोग को चिंतित नहीं होना चाहिए, भारत फिर से अपनी गरिमा प्राप्त करेगा. उसी प्रकार मनुष्यता के साथ होता है. और ये वही पंक्तियाँ हैं फिर से. भगवान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मान सजाम्यहम्. मनुष्य भूल जाता है लेकिन भगवान याद रखते हैं यहां पर. एंड ऑल दैट वॉज डिस्ट्रॉयड मस्ट बी रीबिल्ड एंड ओल्ड एक्सपीरियंस लेबर्ड आउट वंस मोर. क्या ऐसा संभव है? अब देखिए, ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर. सब कुछ संभव है, यह हम पर निर्भर ही नहीं करता, ये तो भगवान के स्पर्श पर निर्भर करता है. वो स्पर्श जो अहिल्या को देव मूर्ति में रूपांतरित कर सकता है, असुंदर कुब्जा को महासुंदरी बना सकता है, वो टच भगवान का सब कुछ कर सकता है. अंधकार को प्रकाश से भर सकता है, दुख की भूमि में आनंद बिखेर सकता है, शुष्क सीमित हृदय में प्रेम और माधुर्य डाल सकता है. वो सब कुछ कर सकता है. ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इज देयर. थोड़ा सा और बस करके वी विल स्टॉप पेज नंबर 4 पे. इसी का फिर वर्णन है, भगवान की टच आती है तो क्या क्या होता है. अब इसको हम लोग अपने साथ भी जोड़ सकते हैं. ये भौतिक वर्णन भी है धरती में उषा काल का, और हमारे जीवन से हम साइकोलॉजिकली जोड़ सकते हैं कि कैसे पहले एक परटर्बेशन होती है, फिर अंदर में होप आता है. ये सब के साथ धीरे 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 बढ़ते बढ़ते सब कुछ यज्ञ में परिवर्तित हो जाता है. पेज 4 पे टुवर्ड्स द एंड, माँ के आगमन से ऑल ग्रू ए कॉन्सेक्रेशन एंड ए राइट. नीचे से पांचवी लाइन, पेज 4 पे नीचे से पांचवी लाइन, अपने आप वो अग्नि जला देते हैं और सब कुछ यज्ञ में परिवर्तित हो. यज्ञ का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? कि वह सब जो हम अपने लिए करते थे, अब लगता है अरे हम चोर जैसा जीवन जी रहे थे, माँ के लिए करेंगे, यही तो यज्ञ है. All grew a consecration and a rite. ये कौन सा रिचुअल है? यज्ञ द्वारा हर चीज शुद्ध होती है. मेरा घर, फिर जब लोग शुरू में यही सोचते हैं मेरा घर, फिर जब माँ की ओर मुड़ते हैं धीरे धीरे, वो कहते हैं यहाँ पर माँ का चित्र रहेगा, है ना, ऐसे शुरू होता है. एक कवर्ड के अंदर, फिर होता है अच्छा एक कमरे में थोड़ा एक स्थान माँ का रहेगा, फिर अच्छा इस कमरे में माँ के चित्र के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ भी माँ का चित्र रख दो. धीरे धीरे करके सब कमरों में माँ का चित्र, फिर नेचुरली पहले चित्र है फिर उपस्थिति है, फिर आप वो सब कुछ करने से थोड़ा घबराएंगे। अब धीरे धीरे कहते हैं माँ के ही घर है, कुछ लोग कहते हैं ये सेंटर बन जाए, ब्रांच बन जाए, ये सब क्यों होता है? भगवान को जब हम देते हैं कोई चीज़ तो वो अपने आप शुद्धिकरण की प्रोसेस, बात ये नहीं कि बाहर से वो रजिस्टर हुआ कि नहीं एज ए सेंटर एंड ब्रांच, इट इज रिलेवेंट, वो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इसका कोई फायदा नहीं कि ये तो सेंटर है उसी का अभिमान हो गया या हम उसको अपने अहंकार से चला रहे हैं, नहीं। मेन चीज़ है कि हम इस भाव से कि ये अब भगवान का घर है, मेरा घर नहीं है। तो वो यज्ञ शुरू हो गया, वहाँ ऐसी अग्नि लग गई कि यज्ञ प्रारंभ हो गया। तो ऑल ग्रू ए कॉन्सेक्रेशन एंड राइट। और यहाँ पर वही फिजिकल वर्णन भी है कि जब प्रकाश होता है तो हर चीज़ धीरे धीरे, जैसे जल उठी, हवा प्रीस्ट का काम करती है जो मंत्र उच्चारण हो रहे हों, और धरती से लेकर चीज़ों को आकाश की ओर उठाने लगती है। और बाद में ये आता है कि थोड़े समय ये चलता है, फिर मनुष्य इस चीज़ को बहुत देर तक संभाल नहीं पाता, वो उस चीज़ को थोड़े समय के बाद भगवान के प्रकाश को वैल्यू नहीं करता, ये एक दूसरी बात है। फिर डिवाइन एफलेटर स्पेंट विट्रो, उषा आती है फिर लौट जाती है, फिर एक लंबा पीरियड फिर से धूप में खटना, संध्या, रात्रि, तैयारी, फिर से उषा काल के आगमन का, ये हमारा चक्र है होता है। यहाँ भी आते हैं लोग, अरे पांडिचेरी जा रहे हैं, देखिए आने के पहले कितनी उत्सुकता होती है ना, आश्रम जाके लगता है कि बस आ गए, बाहर निकल के थोड़ी देर तो ठीक, फिर मोबाइल, हाँ बेटा कैसे हो, खाना वाना किया, खाया कि नहीं, अच्छा वहाँ मौसम कैसा है, क्या लेना देना है ना, ये होता है। अच्छा टीवी देखें, इलेक्शन न्यूज़ आज क्या हुआ, क्या वाराणसी में क्या हुआ, कल देख नहीं पाए, दिस इज कॉमन लाइट ऑफ द अर्थली डे, ये हम सब की, ये कोई आश्रम में भी लोग रहते हैं यही बात होती है, आप देखेंगे आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन ये आश्चर्य की बात नहीं है, सेम प्रोसेस। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग भोजन ग्रहण कर लें तो अपच हो जाता है, वो चाहे फिजिकल फूड हो या आध्यात्मिक फूड हो, अभी आनंद आ रहा है, अभी और एक घंटे तो थोड़ी देर बाद सबको भूख लगी, कहेंगे आलोक भाई कब बंद करेंगे, तो भूल गए 11:30, लोगों की घड़ी देखना शुरू करेंगे, इधर उधर देखना, तो मुझे संकेत मिलेगा कि वो डाइनिंग रूम का टाइम। इट हैपेंस, इट इज लाइफ, क्योंकि हमारे अंदर कोई चीज़ है जो उस तरह नहीं चढ़ सकती कि आज चले और हम सीधा छलांग लगा के पहुंच जाएं, बच्चा नहीं कर सकता, वो गिरता है, तो वो प्रकाश भी स्वयं को अंदर छिपा लेता है, क्योंकि नहीं तो हम जल जाएंगे, उसका प्रेशर अगर पड़ेगा तो हम जल जाएंगे। इसीलिए कई बार यहाँ भी जब लोग रहते हैं तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस, आप देखिए अरे छोटी सी चीज़ क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, भगवान के प्रकाश के पास रहना बहुत कठिन है। केंद्रों में आप देखेंगे कभी कभी महा अहंकार लेकर के, क्योंकि भगवान के पास आप जब रहते हो तो उसका अपना अहंकार जय विजय की तरह, हम तो भगवान के पार्षद हैं, बहुत कठिन होता है उस प्रकाश को झेलना, तो रेजिस्टेंस भी उसी मात्रा में सारे दुनिया भर के। अब भगवान कहते कोई बात नहीं, मेरे पास सबका इलाज है, एक कुशल योग्य डॉक्टर का क्या लक्षण होता है, वो ये नहीं कहता इट इज़ अ डिफिकल्ट केस, डोंट वरी आई विल हैंडल इट, कुशल शिक्षक की क्या पहचान होती है, ये नहीं कहता ये प्रॉब्लम चाइल्ड है इसको कोने में बिठा दो, तो प्रॉब्लम चाइल्ड है अच्छा ठीक है मेरे पास भेज दो, तो भगवान भी कहते हैं सब कुछ मेरे पास भेज दो, और प्रकाश को उसी अनुपात में, क्योंकि हर व्यक्ति तैयार नहीं है, इट विथड्रॉज। सो नेक्स्ट पेज पे, और वहां से हम रुकेंगे, देयर वॉज द कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे, पेज नंबर सिक्स, वो प्रकाश आया, विड्रॉ कर गया, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद, उषा काल में कितना सुंदर लगता है सुबह सुबह, आप सबने देखा होगा पांडिचेरी की सुबह कितनी अद्भुत, और थोड़ी देर बाद उफ गर्मी लग रही है, चलो अंदर चलो, क्या हुआ, वही प्रकाश जो इतना सुंदर लग रहा था सहन नहीं हो रहा, भगवान थोड़ा अपना वोल्टेज और वाटेज बढ़ाते हैं तो बस प्रॉब्लम, छतरी, काश बारिश हो जाए, सुबह में कोई नहीं बोलता बारिश हो जाए, कहते आप बारिश ना हो तो बहुत अच्छा है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाए, तो यहाँ पर देर वॉज द कॉमन लाइट ऑफ अर्थली डे एफ्रेंचाइज फ्रॉम द रेस्पाइट ऑफ फटीग वंस मोर द र्यूमर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइफ. जीवन जाग गया लेकिन फिर किस चीज में उलझ गया, भगवान ने रास्ता दिखाया मुड़ गया लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही. परस्यूड द साइकिल्स ऑफ अर ब्लाइंडेड क्वेस्ट ऑल स्प्रैंग टू देर अनवेरिंग डेली एक्ट्स द थाउजेंड पीपल्स ऑफ द सॉयल एंड ट्री ओबेड द अनफोर्सिंग इंस्टेंट्स अर्ज. फिर से आदमी वही चूल्हा चक्की काम धाम उसमें उलझ जाता है क्योंकि वो हर समय वो अभीपसा स्मरण पूरी तरह स्वयं को उसमें दे देना मनुष्य के लिए कठिन होता है. तो इसका वर्णन है. और जब वो ऐसा करता है तो क्या होता है, भगवान आए थे उसके भाग्य को अपने ऊपर ले लेने कि मैं लिखूंगा तेरा भाग्य, तू स्वयं को समर्पित कर, तू चल मेरे लिए, बाकी मेरा काम है. इसी को गीता में कहा है योग क्षेम वहां में हम, सब मैं करूंगा, तू खाली ये कर, मेरा नाम ले, मेरे से अभिप्सा कर, चिंता मत कर. तू चिंता कर रहा है बाल बच्चे इनका क्या होगा, आई विल टेक केयर. लेकिन हम थोड़ी देर बाद आप पता नहीं दिखते नहीं हो, ये नहीं केयर बोल रहे हो, बच्चे को उस दिन चोट लग गई कैसी केयर, परीक्षा में मुश्किल से पास हुआ. भगवान की योजना बड़े दूसरे ढंग से काम करती लेकिन हम लोग अपनी बुद्धि. तो तब क्या होता है धीरे धीरे, एंड लीडर हियर विद हिज अनसर्टेन माइंड अलोन हु स्टेयर्स एट द फ्यूचर्स कवर्ड फेस मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फेट. भगवान आते हैं मनुष्य के भाग्य का बर्डन अपने ऊपर लेने और हम कहते हैं नहीं नहीं आपका भरोसा नहीं है, पता नहीं आपको हमने अपना घर बार सामान सौंप तो दिया, आप किसी और को दे दो. आप तो बोलोगे सब कुछ मेरा है. नहीं नहीं अच्छा आप ऐसा करो जो मेरा ज्वेलरी का बॉक्स है वो मैं लेके जाऊंगा. स्टार्ट वहां से होता है. फिर हम कहते हैं नहीं नहीं वो भगवान वो कपड़ों की जो गठरी है ना वो मैं उठा लूंगा, कटरों कपड़ों, क्योंकि देखा हमने कि भगवान ने पास में रखा और सो गए. हमको लगता है ये कैसे भगवान है हमारे भाग्य को रख के सो गए. वो तो सो के पूरी सृष्टि बना देते हैं लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर पाते ना. नहीं नहीं हमें वो कपड़े वाली हम रख लेते हैं. फिर धीरे धीरे भगवान वो उसमें पासबुक वगैरह है वो भी थोड़ा हमारे पास दे दो. भगवान कहते तू रख सब अपने पास. और तब क्या होता है मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फीट. यहाँ पे हम लोग रुकेंगे.